अरुणिमा आस्तिक के जख्म पर कपड़ा बांध रही थी। अरुणिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आस्तिक हंसते हुए उस घाव को ऐसे देख रहा था जैसे उसे दर्द नहीं हो रहा है। अरुणिमा ने रोते हुए कहा, ये क्या किया आपने राजा साहब? पर आस्तिक ने किसी पागल साइको इंसान की तरह हंसते हुए कहा, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? डरो मत, ये तो बस गंदा खून है जो मेरे रगों में बह रहा है। मुझे उसे अपनी रगों से निकालकर बाहर फेंकना है। अरुणिमा हैरानी से उसकी ओर देखे जा रही थी। अब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि आस्तिक सिर्फ पागल ही नहीं है बल्कि खतरनाक इंसान भी है और उसे इलाज की ज़रूरत है। अरुणिमा जल्दी से अलमारी की तरफ जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। वो फिर से आस्तिक के पास आती है और उसके जख्मों को साफ करने लगती है। अरुणिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बस चुपचाप आस्तिक के जख्मों को साफ करते हुए उसमें एंटीसेप्टिक लगा रही थी। वो उसके हाथ पर पट्टी बांध रही थी और आस्तिक बस शांत भाव के साथ अरुणिमा को देखे जा रहा था। आस्तिक ने एक ठंडी हवा भरते हुए अरुणिमा से कहा, क्या तुम जानती हो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने शरीर का सारा खून निकालकर बाहर फेंक दूं, क्योंकि मेरे शरीर में उसका खून है, पर मेरे शरीर में मेरी माँ का खून भी तो है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं सिर्फ अपने शरीर का गंदा खून निकालकर बाहर फेंकूं, क्योंकि मेरी माँ का खून तो बहुत अच्छा है, बहुत साफ और बहुत शुद्ध है। क्या बस मेरी माँ का खून मेरे रगों में नहीं रह सकता है? मुझे उस वक्त खुद से नफरत होने लगती है जब मुझे इस बात का एहसास होता है कि मेरे शरीर में उस इंसान का भी खून दौड़ रहा है। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक की बातें सुन रही थी, लेकिन उसने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आस्तिक ने बहुत ज्यादा पी रखी थी और अरुणिमा इस समय आस्तिक से क्या ही सवाल जवाब करती। आस्तिक की बातें हर बार एक पहेली की तरह होती हैं और उसे समझ में नहीं आता कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए। अरुणिमा ने कई बार आस्तिक के शरीर पर जख्मों के निशान देखे हैं, कुछ नए, कुछ पुराने और कुछ तो इतने पुराने जो कि अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। पर आज जब आस्तिक ने खुद का ही अपने हाथ से अपने शरीर का खून बहाया तो अरुणिमा सोचने पर मजबूर हो गई, क्या वो सारे जख्म आस्तिक ने खुद ही से खुद को दिए थे? धीरे धीरे आस्तिक पर नशा हावी हो रहा था और वो धीरे धीरे अपने नशे की हालत में बुदबुदाए जा रहा था। मुझे उसका खून अपने शरीर से निकलना है। अरुणिमा ये सब खून खराबा और नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने जल्दी से आस्तिक के हाथों की पट्टी की और उसे सहारा देकर खड़ा किया। हालांकि आस्तिक भारी भरकम सा था, लेकिन वो इतना भी बेहोश नहीं हो गया था कि अपना शरीर का वजन ही अरुणिमा पर छोड़ दे, इसलिए वो खुद भी लड़खड़ाते हुए कदमों से और अरुणिमा का सहारा लेते हुए बेड तक पहुँचता है। अरुणिमा आस्तिक को बेड के पास ले जाती है, लेकिन आस्तिक लड़खड़ाकर बेड पर गिर जाता है। अरुणिमा उसके दोनों पैरों को बेड पर ठीक से रखती है और उसे ब्लैंकेट से कवर करती है। आस्तिक अभी भी हल्के नशे की हालत में और नींद में जाते हुए बुदबुदा रहा था, मैं चाहता हूं उसका खून मेरे शरीर से निकल जाए। अरुणिमा उसकी बात तो नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उसने गुस्से में आस्तिक को देखते हुए नामे सर हिलाया और अपने मन में उसको साइको पागल कहकर बाथरूम की ओर चली गई। शाम का समय, महल में हर तरफ पार्टी की तैयारी हो रही थी और आस्तिक इस समय अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने एक ब्लैक कलर का महंगा सूट पहना हुआ था जिसमें डायमंड की कवरिंग लगी हुई थी। बालों को अच्छी तरह से जेल से सेट किए हुए थे और उसकी दाढ़ी भी अच्छी तरह से सेट की हुई थी। उसने अपना पसंदीदा परफ्यूम लगाया और अपनी घड़ी को पहनकर वो खुद को आईने में देखने लगा। लेकिन तभी वो रुककर अपने दूसरे हाथ को देखता है। वो अपने कोट की बाजू को हल्का सा ऊपर करता है और अपने हाथ में बंधी हुई उस पट्टी को देखकर मन ही मन कहता है, कल रात मैंने क्या कहा अरुणिमा से? कहीं मैंने उसे कुछ कह तो नहीं दिया या फिर मैंने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई? उसने मेरे हाथ में पट्टी की है, जाहिर सी बात है उसी ने की होगी, और कौन है जो ये हरकत कर सकता है। आस्तिक जब सोकर उठा तो उसने अपने हाथ में पट्टी को बंधे देखा। उसे इतना तो पता था कि वो अपने शरीर से उस गंदे खून को निकालने के लिए खुद को काट रहा था, लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। और इस समय आस्तिक ऐसा फील कर रहा था जैसे कि उसे दर्द ही नहीं हो रहा हो। हालांकि कोई आम इंसान होता तो अब तक दर्द से तड़प रहा होता, लेकिन आस्तिक वो तो मॉन्स्टर है। आस्तिक जब से उठा था तब से ही वो पार्टी के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने एक भी बार अरुणिमा को कमरे में नहीं देखा। आस्तिक को लगा शायद अरुणिमा नीचे किसी काम में बिजी होगी, इसलिए वो अपने कमरे के सोफे पर बैठ गया और अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगा। तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुलता है और अरुणिमा अंदर आती है। आस्तिक देखता है अरुणिमा नॉर्मल कपड़ों में ही है, उसने अभी तक नहीं कपड़े बदले थे और ना ही अपना हुलिया ठीक किया था। अरुणिमा गुस्से में आस्तिक के सामने आती है और उसके सामने एक फाइल आगे करते हुए कहती है, ये क्या है राजा साहब? आस्तिक हैरानी से अरुणिमा को देखता है और फिर उस फाइल को देखकर कहता है, क्या है? अरुणिमा की आंखों से आंसू आ गए और उसने फाइल मेज पर रखते हुए कहा, आपने कहा था आप मेरी माँ की कंपनी सिर्फ उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक करने के लिए अपने नाम कर रहे हैं, लेकिन आपने वो कंपनी फिर मेरी माँ को कभी वापस नहीं दी। ये कंपनी आज भी आपके नाम पर क्यों है? अरुणिमा की बातें सुनकर आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। दोपहर को अरुणिमा आस्तिक की अलमारी में सामान रख रही थी, तभी गलती से एक फाइल उसकी अलमारी से नीचे गिर गई।
आस्तिक का जो पिछला बिहेवियर स्टडी रूम का था, ये देखने के बाद तो अरुणिमा की हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसकी वो किसी फाइल की तरफ नजर उठाकर भी देखे। इसलिए उसने चुपचाप फाइल बंद करके अलमारी में रखने का सोचा, पर तभी उस फाइल से पन्ने निकलकर नीचे गिर गए। अरुणिमा ने जब वो पन्ने उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये उसकी माँ की प्रिंटिंग प्रेस के कागजात हैं। अरुणिमा को याद आता है कि शादी के कुछ दिन बाद आस्तिक ने उसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन करवाया था, ये बोलकर कि प्रिंटिंग प्रेस इस समय घाटे में चल रही है। आस्तिक उसे कुछ समय के लिए अपनी कंपनी के साथ मर्ज कर देगा और फिर जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस की हालत थोड़ी ठीक होती है और वो फिर से प्रॉफिट करने लगती है तो वो प्रिंटिंग प्रेस वापस शारदा जी के नाम कर देगा। लेकिन आज भी इस प्रिंटिंग प्रेस के कागजात आस्तिक के नाम ही है। ये देखकर अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं।